ओम शांति। आप सभी शांति प्रिय आत्माएं हो ना? हो? सबको शांति बहुत प्यारी लगती है। ऐसा तो कोई नहीं है जिसको अशांति प्यारी लगती हो। हम सबको शांति प्यारी लगती है। क्यों शांति प्यारी लगती है? क्योंकि शांति आत्मा का स्वधर्म है, आत्मा का मूल स्वभाव है। तो जब शांति हमारा मूल स्वभाव है तो शांति ही प्रिय लगती है। और जो शांति प्रिय आत्मा होती है वो प्रभु प्रिय भी जरूर होती है, क्योंकि प्रभु से भी फिर उसका प्यार होगा। क्योंकि शांति चाहिए तो किसे मांगेंगे? किसे मांगते हैं शांति? परमात्मा से। हे प्रभु शांति दो, शांति देवा, शांति देवा आत्मा पुकारती है। तो शांति प्रिय आत्मा प्रभु प्रिय भी होती है, लेकिन प्रार्थना में हम शांति जरूर परमात्मा से मांगते हैं। और जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हम शांति मांगते नहीं हैं। क्यों नहीं मांगते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि शांति तो मेरे पास ही है। शांति मांगने से मुझे मिलेगी नहीं, ये तो मेरी ही अपनी शक्ति है। लेकिन परमात्मा से संबंध जोड़ने से वो अधिकार हमें फिर से मिलता है, जो आज हम भूल चुके हैं। जैसे कोई राजा का बच्चा हो और वो तो राजकुमार होगा, लेकिन वो भूल जाता है कि वो राजकुमार है, क्योंकि पिता से दूर हो जाता है। मानो तो पिता ही उसको पहचान देकर फिर अधिकार वापस देता है। तो आज हम सब आत्माएं खुद को भी भूल गई थी, तो पिता परमात्मा को भी भूल गई थी, अपने घर को भी भूल गई थी। ओम शांति तो सबने कहा, लेकिन इसका अर्थ क्या है? जब शांति पाठ करते हैं तो अंत में तीन बार शांति कहते हैं, ओम शांति शांति शांति, ऐसे कहते ना। तो वास्तव में शांति पाठ हम क्यों करते हैं? सबको शांति मिले, सबके प्रति शुभ भावना है, शुभकामना है। जड़ चेतन के प्रति हम यह भावना रखते हैं कि सबको शांति मिले, पर हम शांति का अनुभव स्वयं करके दूसरों को तब करा सकेंगे जब हमें पहले यह पता होगा कि मैं एक आत्मा हूं और मेरा स्वभाव ही शांति है। फिर जिस धाम से मैं आत्मा आई हूं इस सृष्टि मंच पर, वो धाम भी शांति का ही धाम है। और जिस पिता परमात्मा की मैं संतान हूं वो शांति का सागर है। इसलिए तीन बार शांति कहते हैं, ओम शांति शांति शांति। तो ओम शब्द में तीन अक्षर है, अ उ और म। ओम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अगर शाब्दिक अर्थ ले तो बहुत सहज है समझना। कई अर्थ लेते हैं ओम शब्द के, अ उ म इन तीन अक्षरों से बनता है ओम। तो आचरण, उच्चारण, मनन ये भी कहते हैं। आचरण भी हमारा शांति का हो, उच्चारण भी शांति का हो, तो मनन भी शांति का हो, ऐसे मानते हैं। दूसरा भी अर्थ हो सकता है बिल्कुल अ उ म, वही मैं, वही मैं हूं। अ उ म ओम, ओम कहते ही हम अंदर की ओर जाते हैं। तो वही मैं हूं, कौन हूं मैं? आत्मा हूं। तो कैसी आत्मा हूं? शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप, मेरा पिता शांति का सागर, मेरा धाम शांति का धाम, ये है ओम शांति शांति शांति। तो मैं वही हूं, ये पहचान हम खुद को देते हैं, अपनी पहचान, अपने पिता परमात्मा की पहचान और घर की पहचान। जब हमें मिल जाती है तो शांति अनुभव करना बहुत सहज है, वो तो मेरे पास ही है। शांति मुझसे कितनी दूर है, वास्तव में इसी सोच में ही है। वो सोच आ जाए कि मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति धाम का वासी, शांति के सागर, पिता परमात्मा की संतान, ये सोच ही शांति का अनुभव कराएगा। इसीलिए कहते हैं जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। अगर हम सोचते हैं मैं बहुत अशांत हूँ, बहुत अशांत हूँ बहन जी, मेरे जैसा अशांत इस दुनिया में और कोई नहीं होगा, यही सोच हमने अपनी पक्की कर ली है, तो दुनिया की कोई भी हस्ती, शक्ति, व्यक्ति हमें शांति नहीं दे सकती है, एक गारंटी है। और अगर हमने ये समझ लिया कि मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति धाम का वासी, शांति के सागर परमात्मा की संतान, शांत हूं, उसी वक्त ऐसी शांति का अनुभव होगा। और उस समय अगर कोई अशांत करने की भी कोशिश करे, हमें नहीं कर सकेगा अशांत। वो शांति का कवच आत्मा को पहना हुआ होगा। तो शांति हमारी सोच में है, शांति हमारी अनुभूति में है, शांति हमारी मनन में है, चिंतन में है, अनुभव में है, केवल किसी से मांगने से मिलती नहीं है। तो इसलिए जब ये हमें पक्का हो गया तो हम अपने मन को और कहीं नहीं ले जाएंगे सिवाय परमात्मा के। व्यक्ति व्यक्ति को शांति नहीं दे सकता है, परमात्मा ही उस परम स्रोत है जिससे हम शांति ले सकते हैं, और आत्मा भी उसी का स्वरूप है। केवल आवश्यकता है कि मैं परमात्मा के सानिध्य में उपस्थित हो जाऊं। जैसे ठंडी लगती है तो क्या करते हैं, ठंडी लगती है, ठंडी लगती है, गर्मी चाहिए, गर्मी चाहिए, थोड़ी कहेंगे, बस हीटर जला दो, हीटर से सेक लेते रहो, आग जला दो, आग से सेक लेते रहो, धूप के आगे खड़े हो जाओ, सेक मिलता रहेगा। गर्मी लग रही है तो गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है कहने से थोड़ी कोई गर्मी जाएगी। सागर के किनारे चले जाओ, ठंडी लहरें मिलेगी, कूलर चला दो, एयर कंडीशनर चलाओ, पंखा चलाओ, तरीके है ना जिनसे आपको हवा मिलेगी। तो इसीलिए उस शांति का स्रोत पहले मैं खुद हूँ, ये मेरा ही स्वभाव है। दूसरा, मेरा घर भी शांति का ही घर है, मेरा पिता भी शांति का ही सागर है। इसलिए कई जब दुखी होते हैं कहेंगे हे भगवान बस उठा लो मुझे इस दुनिया से, नहीं जीना है, बड़ा दुख है मुझे, नहीं जीना इस संसार से, उठा लो, भगवान कहते हैं उठा लो कहने से नहीं उठने वाले हैं। और जब जाने का समय होगा तो काल पूछने आएगा क्या मैं ले जाऊं, वो तो उसी घड़ी ले जाएगा। आत्मा शरीर से भी नहीं पूछेगी कि मैं जाऊं, जब समय आ जाएगा एक सेकंड लगता है आत्मा को उड़ जाने में। आत्मा को क्या कहते पंछी और परदेशी, वो किसी के मित्र नहीं होते। जिस शरीर के लिए आत्मा ने सब कुछ किया जब तक वो शरीर में है, वह जिस घड़ी हिसाब किताब पूरा होता है एक सेकंड में उड़ जाएगी। तो चिल्लाने से नहीं शांति आएगी, लेकिन अशरीरी बन जाओ, आत्मा देह से न्यारी हो जाओ। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, ये शरीर मेरा एक वस्त्र है। वस्त्र ढीला है या टाइट है हमारे हाथ में है कैसा पहनूं। ढीला पहनूंगी तो सहज होगा निकालना, टाइट वस्त्र होगा तो मुश्किल होगा। तो ये राजयोग के अभ्यास से जब हमको ये पहचान मिलती है कि मैं तो एक शांत स्वरूप आत्मा, एक ज्योति स्वरूप आत्मा, मेरा धाम शांति धाम, तो मन से एक सेकंड में चले जाते हैं, देर नहीं लगती है। जैसे यहाँ बैठे आप जयपुर, उदयपुर, कानपुर, लखनऊ, जहां से भी आप आए हैं, वहां मन से पहुंचने में कितनी देर लगती होगी। बैठे यहाँ है आबू में, और हो सकता है जहां से आप आए हैं वो कम से कम 500-600 माइल दूर है, पर मन से पहुंचने में कितनी देर लगेगी घर में, है? एक सेकंड, एक क्षण सोचा और घर में पहुंच जाएंगे। तो भगवान को पुकारने की, चिल्लाने की, रोने की, दुखी होने की, अशांत होने की जरूरत ही नहीं है। उसकी बजाय मन से एक सेकंड में उड़ जाओ वतन में, शांति के धाम में। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति धाम की वासी, शांति के सागर परमात्मा की संतान हूं। बस ये सोच मन में आई और एकदम शांत हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए कनेक्शन पूरा चाहिए परमात्मा से। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, बिजली जल रही है, पंखे चल रहे, कूलर चल रहा है, माइक चल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडक मिल रही है। अब अचानक सब बंद हो जाए तो गर्मी लगने लगेगी, बेचैन होने लगेंगे। क्यों सब बंद हो गया? क्योंकि बिजली घर से कनेक्शन ही टूट गया। तो बिजली घर से कनेक्शन सही है तो बहुत अच्छा लगेगा, सब कुछ प्राप्त है। अब परमात्मा परम स्रोत है शांति का, प्रेम का, सुख का, खुशी का, आनंद का, शक्ति का। पर आज तक हमने क्यों नहीं अनुभव किया, जबकि हम कहते हैं हम उनके बच्चे हैं, तो बच्चे तो अधिकारी होने चाहिए। अवश्य कहीं संबंध टूट गया है, अब उस संबंध को फिर से जोड़ने की जरूरत है। कैसे संबंध टूट गया, कौन सी बात बीच में आ गई, जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कुछ हाई वोल्टेज हो जाता है, कुछ भी हो जाता है ना ज्यादा, तो एकदम से तार टूट जाती है ना, होता है ना, मीटर में जो फ्यूज है वो उड़ जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है तब। तो क्यों हमें शांति का अनुभव नहीं हुआ? जरूर कोई संबंध मेरा परमात्मा से कट गया है। भले हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, बड़ी प्यार से प्रार्थना करते हैं। लेकिन पूछो, जैसे देह के माता पिता, बंधु, सखा, स्वामी, सद्गुरु, गुरु या शिक्षक, इनसे जिस प्रकार का संबंध है और उनसे प्राप्ति होती है, उसी रूप से परमात्मा मेरे माता पिता, शिक्षक, सद्गुरु, स्वामी, सखा आदि है, वो प्राप्ति उसी रूप से उनसे होती है। तब तो कहेंगे नहीं, तो जरूर संबंध कटा हुआ है। और क्यों कट गया? क्योंकि हम खुद को देह समझने लगे, ये देह रूपी रबर बीच में विघ्न बन जाता है। इसलिए जब फ्यूज उड़ जाता है तो वापस फ्यूज को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? रबर को हटाना पड़ता है, रबर को निकालना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, तब अंदर की तांबे की तार तांबे से जोड़ते हैं तब करंट फिर से पास होता है। ऐसे फ्यूज वायर को जोड़ते हैं, हम रेडियो का कोई स्टेशन चाहते हैं, जोधपुर रेडियो, जयपुर रेडियो, कोई भी स्टेशन चाहते हैं, और सारा दिन सुई घुमाते रहो, रेडियो स्टेशन थोड़ी मिलेगा। परंतु अगर हमें मालूम हो कौन सा फ्रीक्वेंसी, कौन सा मीटर बैंड, कौन सा वेवलेंथ, ये सारी जो उनके नंबर होते हैं वो हमें पता हो, तो उसी स्थान पर हम अपने रेडियो की सुई फटाफट लगा देंगे और आवाज कैच कर लेंगे। तो परमात्मा से हमारा संबंध कहीं टूट गया है, इसलिए वो अनुभूति नहीं हो रही है और हम पुकार ही रहे हैं, प्रभु शांति दो, इतनी शक्ति तू देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, गाते रहते हैं, शांति दो, दया करो, रहम करो, प्यार दो। और कभी कभी तो ऐसे प्यासी हो जाते हैं, कहते भगवान बस एक बूंद ही दे दो, और कुछ न सही, ज्यादा न सही। गीत है ना, एक तू प्यार का सागर, तेरी एक बूंद के प्यासी हम। अब इतने भिखारी बन जाते हैं कि बूंद ही हम चाहते हैं, बस और ज्यादा नहीं। जैसे एक भिखारी किसी दाता के द्वार पर जाए, अब ज्यादा कैसे मांगे, पता नहीं वो दाता देगा या नहीं, कहेगा अच्छा दे दो एक पैसा, हाँ, दाता के नाम एक पैसा दे दो, यही कहेगा ना। अब वो तो करोड़पति, उसके लिए एक पैसा क्या है, पर डर लगता है ना, पता नहीं देगा या नहीं, एक पैसा तो वो तो निकालना सहज है। अब भगवान कहता है कि भिखारी बन गए हो ना, इसीलिए प्राप्ति नहीं हो रही है। इसलिए गायन है, एक कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। भीख मांगते मांगते और भिखारी बनते गए। शांति के भिखारी तो सभी हैं, चाहते तो हैं। इसलिए पहले पूछा आपसे, शांति हम सबको पसंद है तो, पर है नहीं तो भिखारी तो है ना उसके। चाहे दुनिया का कितना भी धन मेरे पास हो, पर शांति के तो भिखारी हैं हम। तो जो चीज वास्तव में अधिकारी के रूप में ले सकते हैं, आज उसके भिखारी बन गए हैं। क्यों भिखारी बन गए हैं? क्योंकि संबंध ही कट गया है। तो इसीलिए राजयोग कहता है, भिखारी मत बनो, शांति आपका अधिकार है, प्रेम आपका अधिकार है, उस अधिकार को कैसे लेना है वो तरीका जानो। तो राजयोग वो सहज विधि बताता है जिसके आधार से हम सहज ही अपना मन परमात्मा में जोड़कर वो अधिकार ले सकते हैं। क्योंकि मन ही वो ऊर्जा है जो आत्मा का परमात्मा से मिलन कराएगी। हम देख रहे हैं जैसे अभी ये मिलन का अनुभव हो रहा है, क्योंकि बिजली के आधार से ये मिलन का अनुभव बड़ा सुखद हो रहा है। अब ईश्वर से मिलन कौन सी ऊर्जा कराएगी? वो मन की शक्ति है, चिंतन की शक्ति है। इसीलिए भगवान ने कहा, इस मन को मेरे में लगाओ। अब अर्जुन बार बार भगवान से यही शिकायत करता है जब गीता पढ़ते हैं, हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल है, दुष्ट है, नीच है, घोड़े के समान है, जो बेलगाम होके दौड़ रहा है। हे भगवान, इस मन को काबू में लाना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान उसको कहते हैं, बस दो शब्द कहते हैं, एक शब्द कहते हैं वैराग्य और दूसरा शब्द कहते हैं अभ्यास। वैराग्य और अभ्यास, इसके जरिए मन को वश में किया जा सकता है। लेकिन जब वैराग्य शब्द सुनते हैं तो कई सोचते हैं, क्या पता क्या मतलब है इसका कि क्या सबको छोड़ देना पड़ेगा, ये मतलब नहीं है। कर्तव्यों को छोड़ना, जिम्मेदारियों को छोड़ना, इसका मतलब नहीं होता है वैराग्य। पर सब कुछ करते हुए भी उसमें फंसे नहीं, जैसे नाव पानी पर अवश्य हो तब तो पार हो जाएगी, परंतु नाविक ये ध्यान जरूर रखता है कि पानी नाव में न आ जाए। अगर पानी नाव में आ गया तो डूब जाएगी। इसीलिए वैराग्य का मतलब है संसार में रहो पर संसार को अपने में न बसाओ। क्या समझो, खुद को एक चेतन शक्ति आत्मा, परम पिता परमात्मा की संतान, परम धाम का वासी। इस संसार में मैं क्यों आया? कई समझते हैं क्या भगवान ने हमको दुख देने लिए इस संसार में भेजा, पूछते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं, भगवान इस दुनिया में भेजा ही क्यों, ये दुनिया बनाई क्यों, ऐसे भी पूछते हैं। क्या पड़ी थी ये दुनिया बनाने की भगवान तुमको और हमको दुख देने की, यहाँ ढकेल देने की, यहाँ भेजने की? अब ये भी अज्ञान है। भगवान को कोई दुख देने की कुछ पड़ी थोड़ी थी। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को दुख देने लिए थोड़ी पैदा करता है, करता है क्या? सोचो, सब माताएं पिताएं बैठे हैं यहाँ, कोई भी माता पिता अपने बच्चों को दुख देने लिए नहीं पैदा करता है। तो भगवान ने हमको दुख देने लिए संसार में भेजा होगा क्या? संसार तो बड़ा सुखरूप है, प्रकृति भी बड़ी सुखरूप है, परोपकारी है, लेकिन हम क्यों दुख का अनुभव कर रहे हैं? अपने ही अज्ञान से। हम क्यों आए इस संसार में, क्या लक्ष्य था? ऐसे ही तो नहीं आए हैं। आज भारत सरकार अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को पैसा देकर, स्कॉलरशिप देकर विदेश में पढ़ने लिए भेजती है, माता पिता पेट पर पट्टी बांधकर बच्चों को पढ़ाते हैं, विदेश भी भेजते हैं कि वहाँ पढ़ लिख करके होशियार होकर के आएगा, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी से भेजते हैं। ऐसे ही थोड़ी भेजते हैं कि खाओ पियो मौज करो जाओ, ऐसे थोड़ी भेजते हैं, जिम्मेदारी से भेजते हैं, जिम्मेदारी निभानी है। तो भगवान ने हमको दुनिया में क्यों भेजा? वास्तव में तीन लक्ष्य हमारे सामने हैं, इसलिए हम इस दुनिया में आए हैं, या भगवान ने भेजा है अगर ये कहो तो। क्योंकि ये संसार हमारा घर नहीं है, ये दुनिया तो एक मुसाफिर खाना है, हम दो दिन के मेहमान हैं, ईश्वर के घर से आए हैं, ईश्वर के घर जाना है। ये दुनिया एक रंगमंच है, हम सब अभिनेता है। तो जब ये हमारी समझ में आ जाता है तो बहुत सहज है समझना क्यों इस संसार में आए। तीन लक्ष्य लेकर के आए। एक लक्ष्य था इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आए। एक अभिनेता मंच पर कितना सुंदर अभिनय करता है, उसकी वास्तविकता तो कुछ और होती है और जो अभिनय होता है वो कुछ और होता है। एक्टर देखो, आजकल इतने फेमस एक्टर्स हैं, अमिताभ बच्चन देखो, क्या नंबर वन हीरो एक्टर है, मान लो कितने फिल्मों में काम करता है, तो वो मंच पर आएगा, स्टेज के सामने शूटिंग होगी, एक्टिंग करेगा। एक फिल्म में वो राजा बनेगा तो दूसरी फिल्म में कूली भी बनेगा, है ना? क्या क्या बनता रहता है, क्या क्या एक कई रोल बजाता है, लेकिन उसका अस्तित्व तो अलग ही है ना, रोल भले अनेक बजावे। तो आत्मा क्यों आई इस संसार में? आत्मा भी बहुत बड़ा कलाकार है। तो जैसे कलाकार को इच्छा होती है कि मैं अपनी कला प्रदर्शित करूं, चाहे नृत्य कला हो, संगीत कला हो, गायन कला हो, कुछ भी कला हो, तो आत्मा कलाकार होने के कारण उनके संस्कार के अंदर कर्म करने की कला है। अब वो कला कहाँ प्रदर्शित करेगी आत्मा? मंच पर ही तो करेगी ना, सृष्टि मंच पर। तो ये संसार पंच महाभूत वो मंच है जिसके आधार से आत्मा अपनी कला प्रदर्शित करती है शरीर के द्वारा। शरीर पंच तत्वों का बना हुआ है। एक तो हमारी कला जो आत्मा के अंदर है कर्म करने की, वो इतनी अच्छी हो, जो भी हमें जिम्मेदारी मिली है इतनी अच्छी हम निभाएं, जो सब कहे वंस मोर ऐसे होता है ना, वंस मोर होता है ना, कोई अच्छी एक्टिंग करता है तो क्या कहते हैं, वंस मोर। ऐसा ना हो जैसे कबीर का एक, कबीर की एक कहावत है, कबीरा जब तुम पैदा हुए तो तुम रोई जग हंसा, पर ऐसी करनी कर चलो जो अंत में तुम हंसो जग रोए। जन्म जैसा संत, बार बार ताली नहीं, जन्म जैसा जो स्थिति थी वो अंत के समय वो स्थिति न बने। अंत के समय वो स्थिति हुई कि जो जा रहा है वो रो रहा है और बाकी सब हंस रहे हैं, कहते अच्छा हुआ बला टली गया जान छूटी। ऐसा थोड़ी होना चाहिए। लेकिन ऐसा व्यक्ति दोबारा नहीं मिलेगा। एक बहुत बड़ा हीरा हमने खोया, इस प्रकार की अनुभूति हम समाज को दुनिया को करा के जाए। जाना तो है ही सबको, किसी को भी यहाँ रहना नहीं है। तो क्यों आए, हर कर्म हमारा इतना श्रेष्ठ हो, गायन योग्य हो, यादगार बन जाए, अच्छी यादगार सबके दिलों में। क्योंकि लेके तो कुछ भी नहीं जाना इस संसार से, न लेके आए हैं न ले जाना है। और दूसरा क्या लक्ष्य है इस दुनिया में आने का, वो है कि आत्मा के अंदर जो गुण है, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद शक्ति, ये अपने कर्म में व्यक्त करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। क्योंकि कर्म में क्या व्यक्त करें, कर्म का मतलब ये नहीं है कि ये चीज लेना है ये चीज देना है ऐसे, यही कोई दुनिया में कर्म है। लेकिन उन कर्मों में ये गुण व्यक्त हो, जैसे आप किसी के जन्मदिन पर जाते हो, उस मुबारक देते हो, तो केवल खाली मुबारक हाथ मिलाकर ही नहीं देते हो, कोई गिफ्ट भी देते हो साथ में, हाँ मुबारक हो, है ना। शादी में जाएंगे गिफ्ट लेकर के जाएंगे, भाई हाथ खाली कैसे जाएं। तो स्थूल चीज तो एक नाम मात्र चीज है, लेकिन अंतर में क्या भाव है कि आप अपना प्रेम उस व्यक्ति के प्रति प्रकट कर रहे हो, चाहे शब्दों में, चाहे वस्तु से, चाहे गले मिलकर, चाहे हाथ मिलाकर, चाहे नमस्ते करके, मतलब वो प्रेम व्यक्त कर रहे हो, सम्मान व्यक्त कर रहे हो, आदर व्यक्त कर रहे हो, भाव है कि वो गुण एक दो को व्यक्त कर रहे हो। तो हम इस संसार में क्यों आए कि उन कर्मों के द्वारा वो आत्मा के अंदर जो गुण निहित है वो कर्म में व्यक्त हो, ये लक्ष्य था। और विशेषता इन गुणों की ये है कि जितना ये गुण हम अपने मन से वचन से कर्म से बांटते जाएंगे जो आत्मा में निहित है, उतने ये गुण बढ़ते जाएंगे। वस्तु बांटने से घटती है वस्तु, पर गुण बांटने से बढ़ते हैं गुण, यही विशेषता है इन गुणों की। इसलिए इस दुनिया में आए, ताकि सुख दो सुख लो, सम्मान दो सम्मान लो, जो आप देंगे वही आपको वापस मिलेगा समाज से, यही आप समझ लो। ये नहीं हो सकता कि आप दो सबको दुख और सोचो मुझे मिलेगा मिले सुख, ये कर्म की गति है। जैसा बीज वैसा फल, तो ये तो आपका अलग विषय है जो कल लेंगे। लेकिन हम इस संसार में इसलिए आए, सुख बांटने आए, खुशी बांटने आए, प्यार बांटने आए। और तीसरा क्या था इस संसार में आने का लक्ष्य, उस ईश्वर का नाम रोशन करने आए। हम किसके बच्चे हैं? अगर कोई बच्चा बुरा काम करता है मान लो, तो बच्चे का ही नाम बदनाम नहीं होता, पिता का भी नाम बदनाम होता है ना। माँ बाप का नाम बदनाम होता है या नहीं होता है, कोई गलत काम करता है तो? तो हम अगर गलत काम करते हैं तो भगवान का भी नाम बदनाम करते हैं। हम किसके बच्चे हैं? वो भी तो हमारे माता पिता हैं। इसलिए जब ये हमें समझ आ गई कि हम ईश्वर का नाम रोशन करने संसार में आए हैं, तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, तो कर्म भी करो पर न्यारे भी रहो, क्योंकि घर को भूलना नहीं है। अब ये तब हमें बुद्धि में आए जब हम सचमुच स्वयं को पहचाने, पिता परमात्मा को पहचान कर उनसे संबंध जोड़कर वो शक्ति प्राप्त करें। आज वो शक्ति हम गंवा चुके हैं, खुद को भी भूल गए, परमात्मा को भी भूल गए, घर को भी भूल गए। ये राजयोग फिर से वो रोशनी देता है। तो कैसे उस मिलन का अनुभव करेंगे, इसके लिए आधार क्या है, विधि क्या है, मन क्यों नहीं लगता परमात्मा में? आप चाहे देखो कितनी भी हम शिकायत करते हैं कि मन नहीं लगता ईश्वर में, परंतु जहाँ दुनियावी बातें हैं, लौकिक दुनिया के लोग हैं, वस्तु वैभव स्थान संसार की परिस्थितियां हैं, इनमें तो मन बड़ा सहज लग जाता है। इनमें तो इतना सहज लग जाता है तो और ही शिकायत करते, बहन जी मैं भूलना तो चाहती हूँ लेकिन क्या करूँ, भूलता ही नहीं है। तो किसके लिए तो हम कहते हैं भूलता ही नहीं है, किसके लिए कहते हैं भगवान के लिए याद ही नहीं आता है। कितना अंतर हो गया, क्यों क्यों अंतर हो गया? क्योंकि हम अपने आप को ये देह समझ बैठे हैं, इसीलिए जो यादें संसार की है वो भूलती नहीं, क्योंकि देह से संबंधित है। और ईश्वर की याद आती नहीं क्योंकि वो आत्मा से संबंधित है, और आत्मा तो हम भूल ही गए अपने आप को। इसलिए राजयोग में कुछ आधार है, फिर उसकी विधि है जिसके द्वारा हम मन को सहज परमात्मा में लगा सकेंगे। तो क्या आधार है, हम थोड़ा सा इसको एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लेंगे। दुनिया में कितने लोग हैं, लेकिन सब में मन नहीं जाता है, कभी जाता है क्या? करोड़ों लोग हैं, एक भारत का ही देख लो, 100 करोड़ से ऊपर भारत की आबादी है, तो क्या सबको बैठ के याद करते हैं? चलो वो छोड़ो, आपके शहर में 5-10 लाख लोग रहते होंगे, उसको भी कहाँ सबको याद करते रहते हैं? आपके मोहल्ले में कुछ हजार लोग रहते होंगे, आपकी कॉलोनी में, उसमें भी सबको कहाँ याद करते होंगे? आपके बिल्डिंग में कुछ 100 लोग रहते होंगे, उसको भी सबको कहाँ याद करते होंगे, करते होंगे क्या? लेकिन कौन से ऐसे विशेष लोग हैं जिनको आप याद करते हो? तो कुछ तो आधार है ना। अब दुनिया में कितनी घटनाएं हो रही है, कहां सब याद है, अखबार पढ़ते भी हैं, फिर अगले दिन सब भूल जाता है, फिर नई बातें आती है, पिछले दिन का सब भूल गया है ना। परंतु कौन सी बात ठहर जाती है मन में, किस कौन सी बात ठहर जाती है जिसको हम भूल ही नहीं पाते हैं, वो भी हम देखें। इसलिए सब बातें याद रहती जरूरी नहीं है, कुछ ऐसा आधार होता है मन को कहीं जाने का। तो पहला आधार है, मन को कहीं भी हम ले जाना चाहते हैं, वो है परिचय, पहचान, उसके विषय में जानकारी। अगर जानकारी नहीं है तो मन जाएगा कैसे? इसलिए परमात्मा के विषय में उनका परिचय, आत्मा का परिचय, ये जब तक नहीं है तो परमात्मा में मन जाएगा ही नहीं। मैं एक माँ हूँ तो बच्चे याद आएंगे, मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो जो ग्राहक है वही याद आएंगे, मैं एक डॉक्टर हूँ तो पेशेंट्स ही याद आएंगे। पर जब ये सोचेंगे मैं एक आत्मा हूँ तो परमात्मा याद आएगा, क्योंकि आत्मा का सब संबंध परमात्मा के साथ ही है। इसलिए आत्मा और परमात्मा की पहचान, ये सबसे पहला कदम है परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने। जैसे हम ट्रेन में आते हैं तो पता नहीं है मेरे पास कौन बैठा है, हम उसको जानते नहीं है। अब टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं, बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, तो मैं उससे पूछूंगी, भाई साहब आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, हाँ परिवार का, धंधे का, कुछ न कुछ बातें करेंगे और बातें करते करते परिचय हो जाता है, पता चल जाता है फलाना कौन है, मैं दूंगी वो भी देंगी। तो पहला कदम है परिचय। अब परिचय लेने के बाद फिर वो उतर गया, मैं उतर गई, चलो भूल गए, सब भूल गया है ना, कहाँ याद है। कभी एक्सचेंज भी करते हैं, वो कार्ड एक्सचेंज करते हैं, पर वो भी पता नहीं कहाँ छोड़ दिया, हाँ कहाँ याद रहता है। लेकिन परिचय के बाद दूसरा कदम होता है, अगर मन को सचमुच वहां ले जाना है तो परिचय मिलते मिलते अगर कोई संबंध निकल आया, मान लो चाहे दूर का ही रिश्ता हो, चाहे किसी भी प्रकार की समानता हो, एक ही जाति है, एक ही धर्म है, एक ही प्रोफेशन है, एक ही गांव है, एक ही स्कूल है, एक ही मतलब कहीं कुछ न कुछ ऐसी समानता या कोई न कोई ऐसी निकटता जिससे वो एकदम करीब आ गए, आ जाते हैं, संबंध हो जाता है, निकल आता है कोई ऐसा घनिष्ठ संबंध, तो लगता अरे तुम तो मेरे ही भाई हो, चाहे दूर का ही रिश्ता क्यों ना हो। अब आत्मा हूं ये तो ठीक है, लेकिन परमात्मा के साथ मेरे सब संबंध है, ये सोचो। केवल परमात्मा परमात्मा, ये भगवान है, ईश्वर, ऐसा ही नहीं है। मैं जो संबंध सोचूं वो मेरा ईश्वर के साथ है, चाहे माँ को, पिता को, बंधु को, सखा को, जो भी संबंध है वो सब ईश्वर से। दुनिया में जितने भी हम संबंध देखते हैं, अनेक दुनियावी संबंध है, मामा, चाचा, काका, भाई, भतीजा, भांजा, ससुर, देवर, जेठ, ननंद, भाभी, जो भी दुनिया के संबंध है, ये सब विनाशी है। आज है कल नहीं रहेंगे, आज अपने हैं कल पराये हो जाएंगे, क्योंकि ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। और जब कर्मों का हिसाब किताब पूरा होता है, कोई संबंध टिकता नहीं है। चाहे दुखी मन से भी अलविदा करना ही पड़ता है, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब इतना ही था। कोई भी यहाँ स्थायी नहीं है संसार में। तो ये जब लगता है ये कड़वा सत्य है, लेकिन है तो बड़ा सत्य, जब ये हमें समझ में आ जाती है बात, तब हम महसूस करते हैं कि वास्तव में आत्मा के तो सब संबंध ईश्वर के साथ है। और हर जन्म में हमने परमात्मा को ये कहा है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, हर जन्म में, एक जन्म में थोड़ी कहा है, इस जन्म में भी कितनी बार कहा होगा, हर जन्म में ऐसे ही कहा है। तो जिसके साथ सर्व संबंध है और जिसके साथ हर जन्म में संबंध है उनको तो भूल गए, और जिसके साथ एक जन्म का संबंध है वो भी थोड़े समय के लिए, वो भी कर्मों अनुसार, वो भी संबंध में अगर कड़वाहट है तो संबंध संबंध नहीं रहता, बंधन बन जाता है, तो भी उसको भूलते नहीं है, उसको भूलते नहीं है। और जिनसे सर्व संबंध और हर जन्म का संबंध, उसको जल्दी भूल जाते हैं। अब बताओ कैसी विडंबना। तो क्यों क्यों? क्योंकि संबंध कहीं कट गया है, अब उसको फिर से जोड़ना पड़ेगा। और जब ये संबंध जुड़ जाए फिर तो आप कहेंगे अभी हम भूल ही नहीं सकते, सचमुच ऐसी अनुभूति होगी। तो संबंध जोड़ने की विधि क्या होती है, क्या विधि होती है? एक कुमार किसी दूसरे घर का, कुमारी किसी और घर की, अब उनका संबंध बनाना है, जोड़ना है, तो उसकी विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, एक ज्योतिषी के पास दोनों की जन्म पत्री ले जाते हैं और कहते हैं भाई जरा देखो महात्मा जी या महाराज जी, इनका योग है, ऐसे कहते हैं ना, योग है। तो वो ब्राह्मण जो होता है, जो जन्म पत्री देखने वाला, वो दोनों की कुंडली देखता है, कुंडली में देखता है ग्रह, संस्कार, विचार, भाग्य, कर्म या जो कुछ भी वो देखता है, उसमें उसमें देखता है कि उसमें मिलते हैं, मैचिंग है, मेल खाता है। अगर मेल खाएंगे तो कहेंगे हाँ योग है, अगर मेल नहीं खाते हैं ग्रह या संस्कार तो क्या कहते हैं भाई, योग नहीं है, तो योग होने के लिए क्या चाहिए? मेल खाना चाहिए, मैचिंग होना चाहिए। अब आत्मा और परमात्मा की कोई मैचिंग हो थी नहीं अभी, इसीलिए योग नहीं था। हमने सोचा परमात्मा वो तो नाम रूप वो सबसे न्यारा है, और मैं तो फलाना नाम रूप धर्म जाति भाषा प्राण देश व्यवसाय ये सारा मैं तो मैं ये हूँ, और वो तो कुछ है ही नहीं, नाम भी नहीं रूप भी नहीं गुण भी नहीं ये भी नहीं। अब बताओ मैचिंग ही कुछ नहीं है तो योग कैसे लगेगा उनसे? या तो फिर कहा भगवान वो तो बहुत पावन है, बहुत पावन है, अति शुद्ध है, और मैं तो मैला हूँ, मैं तो भूलों का खान हूँ। एक व्यक्ति था, उसने कहा सारी जब भी भगवान के आगे जा अपनी ग्लानी करे, भगवान मैं तो भूलों की खान हूँ, मैं तो भूलों का सागर हूँ, मैं तो पापी हूँ, नीच हूँ, कपटी हूँ, गंदा हूँ, बंदा हूँ, चरणों की धूल हूँ, मिट्टी हूँ, मूरख हूँ, निर्बल हूँ। हे भगवान तुम तो दयालु हो, कृपालु हो, ये हो वो हो, सारी महिमा उनकी गाते हैं और अपनी सारी ग्लानी करते हैं। अब बताओ कहाँ वो कहाँ मैं, कोई मैचिंग ही नहीं है। तो बताइए, एक तरफ या तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखते हैं तो भी मैचिंग नहीं, या तो बिल्कुल हीनता की भावना रखते हैं वो भी मैचिंग नहीं, या तो फिर क्या समझते हैं, अनाउंस किया है नहीं नहीं नहीं, ब्यावर की कृष्णा बहन स्टेज के पीछे आ जाए है ही नहीं ना, अनाउंस तो किया मैंने। तो मैचिंग ही कुछ नहीं है तो योग कैसे लगेगा? कहां वो कहां मैं? और फिर तीसरी बात, कई समझते मैं ही भगवान हूं, कई लोग कहते मैं ही भगवान हूं, लेकिन मैं अपने आप को नहीं समझता हूँ अज्ञान के वश। ये अज्ञान का पर्दा हट जाए तो मैं ही भगवान हूँ, अब अज्ञान का पर्दा भगवान को कैसे लगेगा? ये सोचने की बात है। अगर भगवान को ये अज्ञान का पर्दा लग जाए तो फिर ज्ञान कौन दे? भगवान को अज्ञान का पर्दा कैसे लगेगा? भगवान से तो हम ज्ञान मांगते हैं, हे प्रभु ज्ञान दो। असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मा अमृतम गमय। ज्ञानी तो मांगते हैं सत्य का ज्ञान, प्रकाश में ले जाओ, मृत्यु के भय से निकालो, अमृतत्व का अनुभव कराओ। तो वो सत्य ज्ञान ईश्वर हमें देता है। अगर ईश्वर ही भूल जाए अपने आप को तो ज्ञान कौन दे? तो मैं ईश्वर हूँ ये भी गलत है, ये भी हम जैसे ईश्वर से दूर ही जा रहे हैं। एक जोक सुनाते हैं ना कि एक बार नेहरू जी किसी पागल खाने में गए थे, जोक है ये, बुरा नहीं माने कोई, वो पागल खाने में गए थे। तो पागल खाने में एक व्यक्ति से पूछा, बेचारा कमजोर दिमाग का था, तो उसको कहा कि देखो तुमको पता है मैं प्रधानमंत्री हूँ भारत का, नेहरू जी नाम सुना है, भारत का प्रधानमंत्री हूँ। कहता अच्छा, मैं भी ऐसा ही पहले सोचता था। समझ गए ना? मैं भी अपने लिए पहले ऐसा ही सोचता था, यानी वो सोचता ये भी कोई पागल होगा, पागल खाने में क्यों आया है, इसलिए मेरे ऐसे ही कह रहा है कि मैं ये हूँ, अपना परिचय दे रहा है, मैं भी ऐसे ही सोचता था। तो हम भी क्या करते हैं, भगवान के आगे हम कहते मैं ही भगवान हूँ, तो क्या हो गए? क्या हो गए? तो देखिए हम ईश्वर से दूर ही हो गए हैं, अपने आप से भी दूर हो गए हैं, ईश्वर से भी दूर हो गए हैं। अब परमात्मा कहते हैं मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं अपनी पहचान खुद ही आकर के देता हूँ, और तुम्हारी पहचान भी मैं ही देता हूँ। एक बच्चा मेले में पिता से दूर हो जाता है, भटक जाता है, तो बच्चा अपने आप नहीं पिता को ढूंढ पाता है, वो पिता को ही बच्चे को ढूंढना पड़ता है। इसलिए पिता ही अनाउंसमेंट बूथ में अनाउंस करवाएगा, या अखबारों में, या रेडियो पर, या टीवी पर। बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं है, कहाँ कौन हूँ, क्या हूँ, क्या घर है, कुछ पता नहीं। तो हम आत्मा इस संसार में आकर के सब कुछ भूल गए, ये भूल भुलैये के खेल में आ गए, जैसे लखनऊ में है ना, एक भूल भुलैया का मकान है, बहुत बड़ी हवेली जैसी कोठी है, इसको बारा क्या कहते हैं, भूल भुलैया, बारा दरी ना, भूल भुलैया। लखनऊ वाले कौन बैठे हैं, बैठे हैं ना लखनऊ वाले, एक बार अंदर गए अपने आप नहीं निकल सकते हैं, ऐसे लगता है मैं निकल जाऊंगा, फिर देखो दीवार आ जाती है, फिर देखो कुछ और आ जाता है, निकल ही नहीं सकते हैं, अंदर ही अंदर कैद हो जाते हैं। जब तक कोई गाइड ना आए, वो गाइड जब आता है तब उसको पता है क्या रास्ता है, कैसे बाहर निकलते। नहीं भाई लखनऊ वाले ठीक है ना, हम भी जब गए थे तो हमको भी, हम भी उसमें फंस गए थे, वो गाइड ने कहा अभी आप देखो कैसे निकल सकते हो, तो निकल ही नहीं सके। फिर वो कैसे लेकर के आया पता भी नहीं चला, बातों बातों में बातें सुनाते सुनाते, इतिहास की सुनाते सुनाते निकल आए बाहर, हम अपने आप तो निकल ही नहीं सकते थे। तो जैसे अभिमन्यु के लिए दिखाते, भाई चक्र में तो गया लेकिन बाहर नहीं आ सका, वो उसको उसको ज्ञान मिला ही नहीं, पता ही नहीं चला। तो हम आत्माएं भी इस संसार में तो आ गए लेकिन अब घर भी जाना है वो भी भूल गए, पिता को भी भूल गए, खुद को भी भूल गए। इसलिए परमात्मा को आकर के अपनी पहचान देकर अपने साथ योग लगाने की विधि वो खुद ही बता रहे हैं। आप कहेंगे आपको कैसे पता चला ये परिचय, तो ये परमात्मा ने स्वयं अपनी पहचान दी है। कई लोग कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारी अपने जो इनका गुरु है ना दादा लेखराज, इनको ये भगवान मानती होगी, लेकिन हम आपको स्पष्ट कर दें, पिताश्री ब्रह्मा बाबा जिनको ये नाम स्वयं परमात्मा ने दिया, उसके विषय में कल आपको बताया जाएगा, उनको हम भगवान बिल्कुल नहीं कहते, गुरु भी नहीं कहते, भगवान तो दूर की बात है, वो हमारे गुरु भी नहीं है, हम उनको अलौकिक पिता कहते हैं, अलौकिक पिता, क्योंकि लौकिक पिता तो शरीर का पिता है, और परमात्मा को पारलौकिक पिता कहते हैं, और वो अलौकिक पिता हैं जिनके द्वारा परमात्मा ने अपनी पहचान दी है। तो आज सवेरे आपको पहचान प्राप्त हुई कि परमात्मा कौन है। अब अगर हमको उनसे संबंध फिर से जोड़ना है जो टूट गया है, तो उसकी विधि क्या है, समानता। समानता का मतलब क्या है, ये नहीं कि मैं ही भगवान हूं, समानता का मतलब है कि जैसा परमात्मा का स्वरूप है आत्मा का भी वैसा ही स्वरूप है। आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है तो परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, एक जैसा ही स्वरूप है। इसलिए कई बार साक्षात्कार ज्योति का होता है, पर ये आत्मा की ज्योति का दर्शन हुआ या परमात्मा की ज्योति का दर्शन हुआ ये तुरंत पता नहीं चलता है, क्योंकि दोनों ही ज्योति स्वरूप है। अब ये एक समानता हो गई। दूसरी समानता है, एक ही घर है दोनों का, बच्चे का घर सो पिता का घर, पिता का घर सो बच्चे का घर, बच्चे का घर कोई दूसरा घर थोड़ी होता है पिता के घर के अलावा। हाँ भले वो बाद में जाके अलग हो जाए, लेकिन बचपन में तो बच्चे का घर कौन सा होता है, बच्चे का घर, पिता का ही तो घर होता है, अपने घर में ही तो रहेगा वो पिता के पास। तो परमात्मा और आत्मा का घर भी एक ही है, ये नहीं कि परमात्मा तो कहीं सातवें आसमान में रहने वाला और मैं इस धरती का एक प्राणी हूं या मिट्टी हूं, कई लोग समझते यही मैं मिट्टी हूं इस दुनिया की, नहीं नहीं, आत्मा तो पंछी है, परदेसी है इस संसार में। ये भी नहीं है कि मैं तो सातवें आसमान में कहीं मुक्ति धाम का वासी और परमात्मा को यहां पर है, नहीं। हाँ भावना जरूर अच्छी है कि परमात्मा के साथ हूं मैं सदा, हर वक्त हम सदा ये महसूस करें कि मैं परमात्मा के साथ हूं, जिसको हम कहते हैं शिव बाबा के साथ हूं। हम कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझते हैं, कई बार अकेला कहीं जाना भी पड़ता है तो लोग हमें और ही कहेंगे बहन जी अकेले मत जाना, अकेले मत जाना, हम कहेंगे क्यों नहीं, इसमें क्या शिव बाबा हमारे साथ है, शिव बाबा हमारे साथ माना, जब उनको याद करो उनकी शक्ति तो हमारे साथ है ही है, सूरज की किरणें तो हमारे साथ है ही है। तो वो अनुभूति एक बहुत सुखद अनुभूति है कि परमात्मा मेरे साथ है, लेकिन जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो भावना तो यही है कि मेरे साथ है, पर सिद्धांत क्या कहता है? इस दुनिया में तो हम मेहमान हैं, हम भगवान के घर से आए हैं, भगवान के घर जाना है। तो मन और बुद्धि एक सहज रीति से इस संसार से पार चला जाता है उस बेहद धाम में, और महसूस होता है अखंड ज्योति के महतत्व में, मैं प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप आत्मा अपने पिता परमात्मा के सम्मुख हूँ। इसीलिए मन भटकता है, क्योंकि पता ही नहीं मन को कहाँ ले जाएं। हम किसी को याद करते हैं तो पता है ना कि मन को कहाँ ले जाना है, वो कहाँ उसका घर है, वो क्या करता है। अगर पता है सहज, तो मन को ले जाना कितना सहज है। इसलिए सहज ही मन उस धाम में चला जाता है। जब हम ये पहचान लेते हैं कि मैं आत्मा उस धाम की वासी, परमात्मा भी उसी घर का वासी, तो मन और बुद्धि एक आंख के समान है जो उस घर को देखती है, विजुअलाइज करती है, केवल कल्पना नहीं करती है पर याद करती है। मन और बुद्धि ही तो याद करते हैं कि मैं आत्मा उसी घर की वासी हूँ, और उस मन और बुद्धि की आंख के सामने परमात्मा को प्रकट करते हैं, जो रूप में बिंदु है और गुणों में सिंधु है। तो रूप एक जैसा, धाम एक ही, और गुणवत्ता भी वही है। इसीलिए कई कहते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है, या कोई कहते हैं आत्मा सो परमात्मा है। वास्तव में अंश है या सो परमात्मा है, इसके भाव को समझना होगा कि रूप दोनों का एक जैसा है, आत्मा भी और परमात्मा भी एक ही जैसा रूप, और आत्मा उसका अंश है का मतलब है कि गुणवत्ता ईश्वर की और आत्मा की वही है। जैसे अंश में वही गुणवत्ता होती है, परंतु अंश को अगर हम उसको एक शाब्दिक अर्थ केवल दें, टुकड़ा, तो फिर तो गलत अर्थ हो जाएगा। हम परमात्मा के टुकड़े थोड़ी है। एक चीज है, उसके टुकड़े, अभी ये रुमाल के टुकड़े टुकड़े कर दो तो इसका अस्तित्व तो खत्म ही हो जाएगा ना। लेकिन हम इस प्रकार से टुकड़े थोड़ी है जो ईश्वर का अस्तित्व खत्म हो जाए। तो अंश का मतलब क्या है? गुणवत्ता वही है, बाकी हाँ संख्या में अंतर जरूर है। परमात्मा के गुण शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। जितनी महिमा करो उतनी कम, तो जैसे उनकी महिमा अपरंपार है, उस गुण का वो सागर है, आत्मा उसी गुण की स्वरूप है। वो सागर है, आत्मा स्वरूप है। इसलिए कहते परमात्मा शांति का सागर है, तो आत्मा शांत स्वरूप है, अशांत रूप नहीं है। जो ईश्वर का गुण, आत्मा का भी वही गुण, इसलिए गुणवत्ता वही है। पर संख्या में अंतर है, क्वांटिटी में अंतर है, क्वालिटी वही है। जो पिता का गुण, बच्चे का वही गुण। परंतु क्यों परमात्मा को हम पिता कहते हैं? आत्मा के अंदर भी वही गुण है, परमात्मा उसका सागर है, क्योंकि वो दाता है। ऐसे नहीं कि आत्मा को पैदा किया। कई समझते हैं परमात्मा ने आत्मा को पैदा किया, पैदा नहीं किया। आत्मा तो अगर पैदा हुई होती तो एक दिन नष्ट भी हो जाएगी, लेकिन आत्मा न पैदा होती न नष्ट होती। आत्मा न जलती न कटती न सूखती न गीली होती। गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा के विषय में पूर्ण ज्ञान है। आत्मा जब देह में है तो जन्म है आत्मा का, आत्मा का जन्म नहीं है, लेकिन देह में आत्मा आई तो जन्म कहलाया। आत्मा ने देह छोड़ा तो मृत्यु कहलाई। पर आत्मा का न जन्म है न मरण है। जब ये हमें बोध हो गया तो अपने आप को भी पहचान लेंगे, परमात्मा को भी पहचान लेंगे। वो भी एक आत्मा है, लेकिन परम है। परम किस बात में है? परम अर्थात कोई लंबाई चौड़ाई में, साइज बड़े की बात नहीं है परम आत्मा की। परम माना ज्ञान, गुण, शक्तियां, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, जिसमें वो सागर है उसमें परम है। बेअंत उनके गुण है, उनके गुणों की कोई मेजरमेंट नहीं है। लेकिन स्वरूप ज्योति बिंदु है और बिंदु में सिंधु की शक्ति है, बेअंत उनके गुण एक बिंदु में। इसलिए बिंदु भी निराकार तो सिंधु भी निराकार। बिंदु निराकार माना बिंदु की कोई मेजरमेंट नहीं, माप नहीं, लंबाई चौड़ाई ये सब नहीं, और सिंधु की भी कोई लंबाई चौड़ाई का कोई माप नहीं जो हम मेजर करें कि इतने गुण हैं, इतनी परसेंटेज है, बेअंत है, अखूट है। पर वो सिंधु एक बिंदु में, और आत्मा मैं सिंधु भले नहीं हूं क्योंकि मैं आत्मा अपने गुणों को भूल जाती हूँ, स्मृति और विस्मृति के खेल में आ जाती हूँ। तो जब विस्मृति हो जाती है तो स्मृति कौन दिलाए, उनको ही दिलानी पड़ती है क्योंकि वो सदा ही दाता है। अब जब ये समझ मिल गई कि गुणवत्ता वही है, वही गुण है आत्मा परमात्मा के, वही घर है, एक जैसा ही स्वरूप है, इसका चिंतन मन में बुद्धि के द्वारा करना, ये राजयोग में आत्मा परमात्मा का संबंध जोड़ना है। तो कैसे हम संबंध जोड़ेंगे, हम परमात्मा से बातें करेंगे। शिव पिता आप शांति के सागर हो, मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूं। अब वो सागर में स्वरूप हो गया संबंध, ये नहीं कि वो शांति का सागर में अशांति का दास का भंडार, नहीं, तब संबंध नहीं जुड़ेगा, समानता चाहिए। प्रकृति के अंदर जहां विरोधाभास है वहां आकर्षण है, प्रकृति में नॉर्थ और साउथ आपस में मिलते हैं, चिपकते हैं, मैग्नेट होते हैं ना चुंबक, जब नॉर्थ को साउथ के साथ मिलाओ तो एकदम चिपक जाएंगे और नॉर्थ को नॉर्थ के साथ जोड़ने की कोशिश करो तो अलग हो जाएंगे। तो प्रकृति के अंदर हम ये जो आकर्षण देख रहे हैं, ऑपोजिट पोल्स का जहां आकर्षण है, इसी के आधार पर ये सारा ब्रह्मांड खड़ा है, जो कैसे एक दो के आकर्षण में सारे ग्रह घूम रहे हैं। अगर ये सब नहीं होता तो पता नहीं धरती कहां गिर जाती होती, कहां कुछ चांद गिर जाता होता, लेकिन ये सब आपस के आकर्षण में घूम रहे हैं, सूरज के आकर्षण में घूम रहे हैं। तो ये प्रकृति की चीज है, लेकिन आत्मा और परमात्मा की जहां बात आती है वहां समानता का आकर्षण है, आध्यात्मिकता में समानता का आकर्षण है, समान विचार, समान संस्कार, समान स्वभाव, समान चिंतन। अगर ये समान है तो आकर्षण होगा। आप देखेंगे पति पत्नी का कई बार कुछ साल इकट्ठे चले, फिर उसके बाद झगड़े ही होते रहते हैं, क्यों, क्योंकि विचार बदल गए, संस्कार बदल गए। तो जब परिवर्तन हो गया विचारों संस्कारों में तो झगड़ा चालू हो जाएगा। अब इसके लिए अगर वो संबंध को कायम रखना है फिर एक को तो त्याग करना पड़ेगा, दूसरे के साथ मैच करना पड़ेगा, अपना कुछ भुलाना पड़ेगा, तभी तो रह सकेंगे, नहीं तो हाँ छुट्टा छेड़ा हो जाता ना, क्या बोलते डाइवोर्स, भाई नहीं जी सकते इनके साथ, क्योंकि संस्कार मिलते नहीं है, स्वभाव मिलता नहीं है। तो आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध ये तब हो जब स्वभाव संस्कार की भी मैचिंग हो, सब मैचिंग हो। इसलिए राजयोग में हम क्या कहते हैं कि परमात्मा से संबंध जोड़ने की विधि, स्वरूप में समानता, गुणों में समानता, घर की समानता, इसका चिंतन करते 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 मन को परमात्मा में लगा दो, तो ये संबंध अपने आप जुड़ जाएगा। ये नहीं कहो हे प्रभु मुझे शांति दो, नहीं, शिव पिता आप शांति के सागर हो, मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूँ। क्या हूँ, शांत स्वरूप हूँ। तो जब मैं हूँ ही शांत स्वरूप तो शांति के सागर से दूर कहाँ हूँ, शांति मांग थोड़ी रही हूँ, मैं तो हूँ ही। तो शांति के स्रोत से वो शांति की अनुभूति होगी, ऐसे लगेगा जैसे मैं उस सागर में खो गई, क्योंकि मैं भी वही स्वरूप हूँ। तो मन को परमात्मा में ले जाने का पहला आधार है परिचय। मन और बुद्धि की आंख उसको देखे, उसका स्वरूप को देखे, उस घर को देखे, उनके गुणों का चिंतन करे और फिर संबंध जोड़ने की विधि समानता को ला करके उसी में खो जाए। जो ईश्वर के गुण हैं वो मेरे भी गुण हैं। फिर तीसरा आधार मन को कहीं ले जाने के लिए है, वो है स्नेह, प्यार। किसी से प्यार है तो मन जाएगा, भले संबंध भी क्यों ना हो, पर प्यार नहीं है तो मन नहीं जाएगा। अब आत्मा को परमात्मा से इतना प्यार का अनुभव हो, परमात्मा प्रेम का सागर है, वो प्रेम मेरे अंदर इतना आ जाए कि उनके सिवाय मैं और किसको याद ही न करूं, लेकिन वो आज नहीं है, इसीलिए परमात्मा की याद नहीं आती। तो कैसे आत्मा का प्रेम बढ़े ईश्वर के साथ? आज तक वो प्रेम की बजाय स्वार्थ आ गया है, प्रेम ने की जगह स्वार्थ ने जगह ले लिया है। अब पति पत्नी में भी वो अगर सच्चा प्यार नहीं है, केवल स्वार्थ है, तो एक दिन वो संबंध खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्यार बहुत जरूरी है। बाप बेटे के बीच में अगर वो प्यार नहीं है तो भी संबंध ज्यादा दिन नहीं चल सकेगा। अब प्यार कैसे बढ़े? दुनिया में हम देखते हैं प्यार शब्द का अर्थ ही मनुष्य भूल गया है। प्यार के लिए तो कितना सुंदर कहा है कबीर ने, पोथी पढ़त पढ़त पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का जो पढ़े वो ही पंडित होए। अभी वो ढाई अक्षर प्रेम का मतलब क्या? आधा प र रे म, ये ढाई अक्षर पढ़ना होता है क्या प्रेम का? तो हो जाएंगे पंडित। प्रेम का अर्थ क्या होता है? प्रेम का अर्थ होता है कुर्बानी, प्रेम का अर्थ होता है त्याग, प्रेम का अर्थ होता है समानता। जिसके साथ प्यार होता है उन जैसा हम बनना चाहते हैं। प्रेम का अर्थ होता है कि जो वो जिससे प्यार होता है उनके लिए हम सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हैं। ये नहीं प्यार का अर्थ होता है कि उनसे मांगते ही रहो, वो प्यार थोड़ी हुआ, वो तो स्वार्थ हो गया। उनसे जब तक मिला तो ठीक है, प्यार है, नहीं मिला तो तो भगवान ने जब तक दिया तो भगवान तुम बहुत अच्छे हो, और नहीं दिया तो भगवान तेरे जैसा बुरा कोई नहीं। ऐसे होता है क्या? प्यार तो अविनाशी होता है। स्वार्थ है जहां वहां प्रेम कोसों दूर है। और स्वार्थ किस आधार पर होता है? किसी प्यार किसके आधार पर होता है? गुणों के आधार पर। हम किससे प्यार करते हैं? मान लो सच्चाई के आधार पर प्यार होता है। अगर सच्चाई खत्म हो गई, वफादारी खत्म हो गई, तो प्यार भी खत्म हो जाएगा। आपके आगे देखो सच्चा सोना कोई रखा हो और या नकली सोना रखा हो, कहेंगे भाई ये 9 कैरेट गोल्ड है, ये 24 कैरेट गोल्ड है, और 24 कैरेट में चमक नहीं है पर 9 कैरेट में चमक बहुत है, और आपको बताया जाएगा ये सच्चा है, ये काला पड़ जाएगा, अभी तो चमक है। अब समझदार व्यक्ति क्या करेगा? वो 9 कैरेट वाला लेगा क्या? क्या करेगा है? क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा, काला पड़ जाएगा, भले उसमें चमक नहीं है लेकिन ये गुणवत्ता तो उसकी है ना, वो तो स्थाई होगा। तो सच्चाई आकर्षित करती है। जितना हम अंदर में ईश्वर से सच्चे हैं, उतना ईश्वर से सच्चा प्रेम हम अनुभव कर सकेंगे और अपना प्यार ईश्वर से व्यक्त कर सकेंगे। अगर केवल स्वार्थ है भगवान के प्रति तो फिर ये सच्चा संबंध नहीं है। फिर तो मन भटकेगा, जहां से जो प्राप्ति हुई वहां ही मन चला जाएगा। पर परमात्मा से ही मुझे सर्व प्राप्ति करनी है, ये भी एक आधार है प्राप्ति। जहां से प्राप्ति है वहां मन अपने आप जाएगा। अब मन अशांत हुआ, हे भगवान, क्यों हम भगवान को याद करते हैं शांति के लिए? क्योंकि आत्मा को परमात्मा से शांति की प्राप्ति हुई है। इसीलिए तो मन फिर से वहीं चला जाता है। तो मूल रूप से चार आधार हैं मन को परमात्मा में ले जाने के लिए। एक है परिचय, दूसरा है संबंध, तीसरा है स्नेह प्रेम, चौथा है प्राप्ति। अब ये चार आधार मन को देने हैं और उसी अनुसार चिंतन करना है। अब तक हमने जो आधार देने की कोशिश की मन को, वो स्थूल आधार दिया। सोचा मुझे एक मंत्र मिल जाए, बस मैं भगवान का नाम लेता रहूं तो मन लग जाएगा। चलो मंत्र भी मुझे मिल गया, किसी ने मुझे कहा ओम नमो शिवाय का मंत्र जाप करो 1,00,000 बार। अब ये तो स्थूल चीज हो गई, मुख पर में जो मंत्र होगा ओम नमो शिवाय, चलो किसने माला भी पकड़ा दी और कहेंगे ये एक एक मणका फेरते जाओ, ओम नमो शिवाय का जाप करते जाओ, चलो शिवलिंग भी मेरे सामने रख दिया गया और मैं उस शिवलिंग के सामने ओम नमो शिवाय का जाप कर रही हूँ और हाथ में माला रख रही हूँ, और मुझे कहा गया कि 1,00,000 की गिनती अनुसार सारे दिन में जाप करना है। मान लो आज यही तो होता है, हम जो भक्ति में देखते हैं। अब 1,00,000 की गिनती तो बहुत बड़ी गिनती है, 100,000 होते हैं 1,00,000 में। चलो एक बार में भी 100,000 गिनती किया तो भी 100 बार तो 1,000 गिनती करना पड़े तब 1,00,000 बने। तो गिनते रहेंगे, अभी 10,000, अभी 20,000, अभी 50,000, अभी 70,000, अभी 90,000, और जब 100,000 हो जाएगा पूरा हुआ। अब योग किसके साथ हुआ, शिव के साथ हुआ या गिनती के साथ हुआ, बताओ? गिनती के साथ हुआ, शिव के साथ हुआ ही नहीं। अगर शिव के साथ होता तो गिनती करने की क्या जरूरत है? एक बच्चा गिनती करता है क्या कि सारे दिन में मैं अपने पिता को 100 बार ही याद करूंगा, बस 101 बार भी नहीं, ऐसे? और 100 बार हो गया, बस हो गया अब याद, ऐसे? जिससे प्यार होता है उसकी याद में गिनती करने की क्या बात होती है? एक पत्नी पति से अच्छा संबंध है, पतिव्रता नारी है, वो कभी भूल सकती है क्या मैं किसकी पत्नी हूँ, या गिनती करना पड़ता? और ही मैंने देखा है पति का तो नाम भी नहीं लेते हैं नाम भी नहीं लेंगे, वो कहेंगे अपने अपने आपके भाई को बुला के लाओ, कभी नहीं कहेंगे फलाने को बुला के लाओ। मैंने देखा राजस्थान में, मैं एक जगह गई थी तो एक माता मिली, वो बच्चे उनके वो चंचल थे, तो अभी बच्चों के अभी कैसे उसको कहे, तो मुझे कहते बहन जी अपने आप अपने बच्चों को समझाओ ना। मैंने कहा मेरे बच्चे कहाँ भाई, ये तो तेरे है। तो कहा नहीं नहीं, कहते राजस्थान में हम कभी नहीं कहते मेरे बच्चे, हमेशा कहेंगे आपके 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 बच्चे, ऐसे बोलते हैं ना आपके। तो मैंने कहा देखो कितनी अच्छी बात है, कभी नहीं कहेंगे मेरा आपका, आपका भाई, आपके बच्चे, आपका घर, आप, यानी ये कितनी अच्छी धारणा है सब में होगी। मैं पर जहां मैं गई, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो भारत की ये संस्कृति है, मेरा शब्द नहीं कहेंगे, जाएंगे तो भी नहीं कहेंगे मैं जाता हूँ, हमेशा क्या कहेंगे मैं आता हूँ, शुभ बोलना होता है। तो इसीलिए मेरा कुछ नहीं है, आपका है। वैसे भी देखो आरती भी जब हम करते हैं तो क्या कहते हैं, सब भगवान का है, क्या कर कहते हैं आरती में आता है ना, ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो आरती के समय सब भगवान का और बाकी समय सब मेरा, तेरा भी मेरा और मेरे हाथ न लगा, ऐसे? तो ये तो हम समझते हैं भगवान को धोखा दे रहे हैं ना। अब भगवान को क्या धोखा दे रहे, खुद को ही धोखा दे रहे हैं, जो आरती में कहा सब तेरा और अंदर में सोच रहे हैं मेरा। ये आरती के समय तेरा, बाकी समय मेरा, हर वक्त तेरा है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। हम आत्मा तो इस संसार की कोई वस्तु नहीं लेकर के आई। इसीलिए किसी ने इंग्लिश में बहुत सुंदर शब्दों में कहा, हिंदी अनुवाद भी है, गॉड व्हाट यू हैव इज गॉड्स गिफ्ट टू यू, आपके पास जो कुछ है वो भगवान की दी हुई देन है, व्हाट यू मेक ऑफ इट विल बी योर गिफ्ट टू गॉड। आप जो इनसे बनाएंगे वो आपकी गिफ्ट होगी भगवान को, क्योंकि संसार में छोड़ के जाना है। आप तो लेके तो नहीं जाओगे इस दुनिया से, यहीं सब रह जाना है। चाहे कितना भी कुछ कर लो, यहीं से लिया यहीं छोड़ के जाना है। अगर इसको 10 गुना बढ़ाया वो भी यहीं छोड़ के जाएंगे, घटाया तो भी यहीं छोड़ के जाएंगे, कुछ भी नहीं ले जाएंगे। तो ये भगवान की ही दुनिया है। हम हाथ खाली आए हैं, हाथ खाली जाना है, लेकिन क्या लाए हैं, क्या ले जाएंगे? अपने ही कर्म, अपने ही किए हुए संकल्प, अपने ही संस्कार, अपने ही विचार, यही आत्मा अपने साथ ले जाएगी। तो इसीलिए राजयोग का अर्थ क्या है? आत्मा और परमात्मा का अनादि अविनाशी संबंध को फिर से जोड़ना। उसके लिए स्वार्थ नहीं चलेगा, निस्वार्थ भाव चाहिए। हम भगवान को इसलिए नहीं याद करते हैं क्योंकि उनसे कुछ हमें चाहिए, चाहिए नहीं। और ये राजयोग हमें कहता है कि कुछ भी मांगो मत। राजयोग है ना, रॉयल योग है, भिखारी मत बनो। कई कहते हैं कि भगवान से मांगना नहीं होता है तो और क्या करना होता है? भगवान से मांगना ही तो होता है। जो भी प्रार्थना करते हैं मांगते ही रहते हैं, या तो वस्तु मांगते हैं, धन दो, पुत्र दो, प्रमोशन दो, मकान दो, एक गाड़ी दो, ये दो, वो दो, न जाने क्या 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 मांगे रखते हैं भगवान के आगे। जब कोई चीज चाहिए तभी मंदिर जाएंगे, नहीं तो कभी जाएंगे भी नहीं। एग्जामिनेशन का समय आएगा तब भगवान के पास जाएंगे, भगवान मुझे पास कर दो। हाँ, फिर सोचते हैं ऐसे ही केवल मांगू तो ठीक नहीं लगेगा, तो कहेंगे भगवान तू मुझे पास कर देगा ना तो मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, भगवान तू मुझे पास कर देना। वो मिनते मानते हैं, अच्छा पास किया तो 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाया, नहीं किया तो है प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे। ऐसे विद्यार्थी बताओ जो बैठे हैं, आप लोग क्या करते हो, प्रसाद चढ़ाएंगे या नहीं चढ़ाएंगे अगर पास नहीं किया तो? तो क्या भगवान पास करेगा तो ही चढ़ाएंगे? ये तो स्वार्थ हो गया। अब भगवान कहते हैं ऐसा संबंध ईश्वर से मत जोड़ो। ये संबंध, स्वार्थ का संबंध कायम नहीं रह सकता है। तो फिर कई कहते हैं नहीं, भगवान की दया से तो सब कुछ है, मैं भगवान से कभी कुछ मांगता नहीं हूँ, मैं तो सदा भगवान को धन्यवाद ही करता हूँ। धन्यवाद भगवान, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, धन्यवाद। लेकिन मैं शांति तो मांगू ना भगवान से कम और कुछ ना मांगू तो। अब राजयोग कहता है ये भी मांगने की जरूरत नहीं है, शांति कैसे मांगेंगे? अच्छा मिल भी जाएगी, चलो वस्तु मिलेगी तो पता चला वस्तु मिली भगवान ने दी, लेकिन शांति मिली ये कैसे पता चलेगा? वो तो कोई स्थूल चीज तो नहीं है, वो तो मन की स्थिति है। तो इसलिए ये भी कोई मांगने की चीज नहीं है, ये तो अधिकार से हमें अनुभव करना है कि मैं शांति के सागर पिता की संतान शांत स्वरूप हूँ, तो ये भी मांगने की चीज नहीं है। फिर कई कहते अच्छा बहन जी शांति भी न मांगो, परंतु मैंने तो बहुत बहुत भूले करता हूँ, तो कम से कम भगवान से माफी तो मांगू। नहीं तो भगवान से माफी नहीं मांगूंगा तो और भूले होती रहेगी। तो हम कहते अच्छी बात है भगवान से माफी मांगो, लेकिन फिर भी भूल करते तो रहते ही हम, माफी भी मांगेंगे फिर भूल भी करते रहेंगे, तो भगवान कब तक माफ करेगा? माफी मांग के फिर भूल न करें तो भगवान माफ भी करेगा। एक बच्चा रोज भूले भूल करे, कुछ गिराए रोज तोड़े, कहेगा मम्मी सॉरी, अब कितने दिन मम्मी सॉरी करेगी? गिराता रहे तोड़ता रहे मम्मी सॉरी करती रहेगी क्या? समझाएगी ना बेटा तोड़ो क्यों, आप ध्यान से उठाओ, बार बार सॉरी करते रहते हो। तो हम भी क्या कहते भगवान माफ करो, भगवान माफ करो। अब भगवान ने माफ किया या नहीं ये पता कैसे चले, कैसे पता चले? और भगवान तो कहेंगे जो कर्म किया है वो फल तो पाना ही पड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो कई कहते क्या माफी ना मांगे क्या भगवान से अगर मैंने भूल की। हम कहते जरूर परमात्मा को सब सुनाओ, सत सुनाओ, छिपाओ नहीं भगवान से, कुछ छिपा तो वैसे ही नहीं सकते, वो तो सब जानता है। लेकिन सत्य बता करके प्रतिज्ञा करो कि वो भूल फिर नहीं करेंगे, तब भगवान से सच्चा प्यार अनुभव होगा। प्रतिज्ञा नहीं कि केवल भगवान माफ कर दो, तो सोचेंगे भगवान माफ कर दिया, ये अपने आप को खुश कर रहे हैं, ये समझ लो। इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं बच्चे सच्चा प्यार मेरे से रखना है, सच्ची प्रीत का अनुभव मेरे से करना है, तो अंतर में ये देह अभिमान का त्याग करो। मैं शरीर नहीं हूं, जो कुछ मेरा 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 समझ के बैठा हूं ये मेरा है नहीं, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। मीरा बाई ने गिरधर को सब कुछ माना, मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। लेकिन हम कहते हैं कि बिचारी कितना भी उसने कृष्ण से सर्व संबंध जोड़े, परंतु कृष्ण की दुनिया में तो ऐसे जा नहीं सकते, उस सत्युगी दुनिया में जाने के लिए तो उस जैसा बनना पड़ेगा। तो इसीलिए कई गीत बन गए, राधा से भी प्यार तो मीरा से भी प्यार, किसको आगे रखे, राधा जैसा बनना है या मीरा जैसा बनना है, कैसा बनना है, कैसा बनना है, केवल मांगते ही रहना है या राधा की तरह उस प्रेम की दीवानी बन जाना है, जैसे वो मीरा जैसे राधा के लिए बताते। यानी हर एक के अपने अपने भाव होते हैं, पर कहने का भाव है कि हम वास्तव में किसको याद करें, किसी देहधारी को याद न करें, हम याद करें तो उस निराकार ज्योति स्वरूप को, क्योंकि मैं आत्मा भी एक ज्योति हूँ। तो चलिए अब हम इसका अभ्यास करेंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर उसी अभ्यास में हम ऐसे मस्त हो जाएं जो चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते ये भी ये अनुभव साथ रहे, कायम रहे। तो चलिए ये लाल प्रकाश हमें संकेत देता है कि अब अपनी बुद्धि को परमात्मा की तरफ ले जाओ, जो रूप में ज्योति बिंदु है और गुणों में सिंधु के समान बेअंत है। उस दाता के हम सभी संतान हैं, उस परम धाम के वासी हैं, अखंड ज्योति महतत्व की वासी हूं मैं आत्मा। तो सीधा बैठेंगे, सीधा बैठेंगे, आंखें बल खुली रहे, और मन से बुद्धि से अंतर में समझ लाए कि मैं कौन हूं, मैं किसकी संतान हूं, मैं कहां का वासी हूं, कहां मुझे जाना है और क्या बनना है। भीतर जाएं, सर्वप्रथम स्वयं को पहचाने, कि इस शरीर के भीतर मैं एक अजर अमर अविनाशी शक्ति विराजमान हूं, एक दिव्य ज्योति विराजमान हूं, भ्रकुटि के मध्य एक चमकता हुआ सितारा विराजमान हूं, मैं आत्मा, इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं। ये शरीर एक वस्त्र के समान है जिसे धारण कर मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर अभिनय कर रही हूं। मुझ आत्मा ने अनेक देह रूपी वस्त्र धारण किए और अनेक अभिनय किए, पर मेरा अस्तित्व एक ही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं। प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। सुख स्वरूप आत्मा हूं। आनंद स्वरूप आत्मा हूं। शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। मुझ आत्मा का मूल वतन पांच तत्वों से पार अखंड ज्योति का महतत्व है। सुनहरा लाल प्रकाश इस धाम का प्रकाश है। जहां चारों ओर शांति ही शांति है, मैं आत्मा मन और बुद्धि के द्वारा ऐसी उड़ान भरो, एक सेकंड में अपने धाम में पहुंच जाऊं। एक बेहद दुनिया जहां चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश है, असीम शांति और मैं चमकता हुआ सितारा आत्मा अपने बेहद पिता परमात्मा के सम्मुख हूं। रूप में ज्योतिर्बिंदु और गुणों में सिंधु के समान मेरे कल्याणकारी शिव पिता, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, सर्व गुणों का स्रोत है, जिसके साथ मुझ आत्मा के सर्व संबंध है। रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु मेरे प्यारे शिव पिता। जो कल्याणकारी है जो शांति के सागर है मैं आत्मा उनकी संतान शांत स्वरूप हूं। शांत स्वरूप हूं। शांत स्वरूप चले जाइए शांति के सागर की गहराई में, खो जाइए शांति के सागर में, जैसे बूंद खो जाती है और मनाइए मिलन शिव पिता से। मैं आत्मा शिव पिता से मिलन मनाकर धन्य हो गई।